वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृता सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबद्धाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यं हे कृष्णकन्याबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत मसुरे सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी मानसुते देवी प्रणमामि यं प्राव्रजन्तमनुते तमते चतुष्टयं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो भुनेदु तं सर्वभूतहृदयं यत्किं करिष्यसि भोक्षा खलु कातरं नित्यं परस्य पुरुषस्य सुखं नमो जस्या कदारसुदे विशुभानुजाय तत्कीलिकुञ्जभवनाङ्गनां कल हम लोग दस मूल के पहले श्लोक को कुछ विचार कर रहे थे। उसमें पहले है आम नाय प्राह, इसके संबंध में बोलो तो तुम आम नाय प्राह अन्याय क्या चीज है।
गुरु परंपरा के द्वारा जो वाक्य प्राप्त है स्मृति स्मृति पुराण एवं तदनुगत जो शास्त्र समूह है उसी को हम नहीं देखते
और थोड़ा सा विस्तार के साथ बोलो कला है वे वेद प्रमाणिक नहीं है। जिसमें ये वेद में है छंदोग्योपनिषद बृहदारण्यक और जो वेद हैं ये उपनिषद तो उनको प्रमाणिक नहीं माना गया ना। फिर कहता है अमनाय वाक्य नहीं है कि है तो उनको तो लिए लिया गया तो उसके विषय में तो प्रश्न नहीं।
ये छंदोग्योपनिषद जो लिए हैं अहम ब्रह्मास्मि बा प्रज्ञानं ब्रह्म ये तो आंशिक बात उन्होंने बोल जान जिगला प्रणव वाक्य वेदर मुख्य वाक्य बोले
उल्टा वो तो पीछे की ये हम नए वाक्य किसको कहेंगे। हमारी गुरु परंपरा से वेद उपनिषद पुराण इतिहास इत्यादि जो हैं और उनके अनुकूल जो शास्त्र हैं जिसको हमारे गुरु वर्ग के आचार्यों ने स्वीकार किया उसको हम प्रमाण मानते सीधी स्वीकार। क्यों प्रमाण इनको मानते हैं। बहुत सी ऋषि लोगों ने उपनिषद के नाम पर बहुत सी शाखाओं को नए रूप में प्रचार किया और उसमें कर्म कांड की प्रधानता इत्यादि दी गई। तय विद्यांग मा और भी ये सब जो हैं वेद हमारे प्रमाण हैं जो हमारे ऋषियों ने जैसे 108 उपनिषद और उसकी 11,028 को प्रमाणिक ये माना शाखाओं को इसके बाद वाली को नहीं माना। इसमें कोई भी चीज है शंकराचार्य ने उसका अर्थ अलग किया है हमारे आचार्यों ने अलग अर्थ किया वो दूसरी बात है किंतु उन शाखाओं को मान लिया। गीता उसमें है भागवत प्रमाणों का शिरोमणि है इसका अतिरिक्त हमारे आचार्यों ने जिन ग्रंथों को स्वीकार नहीं किया प्रमाण के रूप में, भले ही वेद का अंश है, या तो प्रक्षिप्त है या कुछ गड़बड़ी का, इसलिए उसी को मान करके हम लोग चलते हैं। अब उसमें ये विचार करें, कहीं कहीं आठ प्रमाण मानेंगे, कहीं कहीं पर
दस,
कितना पांच,
दस
प्रमाण माने, कहीं पर पांच प्रमाण माने, कहीं ने तीन माना, कहीं एक माना। शंकराचार्य ने दस प्रमाण माने, प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव, अनुपपत्ति, आर्ष, अनुपपत्ति इत्यादि, ये दस प्रमाण मान, जिसमें तीन को प्रत्यक्ष अनुमान और सब तीन को मध्वाचार्य ने और बाकी को कंस कर दिया, और शंख वाले जो पातंजलि इत्यादि है उसको दस माना, और लोगों ने किसी ने दस माना, किसी ने पांच माना, किसी ने तीन माना। हम लोगों के आचार्यों ने भी, हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के, इन्होंने एक को माना मूल रूप में शब्द को, और बाकी दो को अनुमान और प्रत्यक्ष को, यदि उसके अनुगत हो तो प्रमाण माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना। शब्द के अनुगत हो, शब्द माने अपौरुषीय वेद, अपौरुषीय माने वेद को भगवान के मुख की वाणी कही जाती है, इसलिए उसको प्रमाण माने। सब कुछ गलत हो जाएगा, प्रत्यक्ष भी गलत हो जाएगा, अनुमान भी गलत हो सकता है, ऐतिह्य भी गलत हो सकता है, आर्ष, उपपत्ति और जितने भी प्रमाण हैं सब गलत हो सकते हैं, किंतु शब्द ये नहीं हो सकता। जैसे गोबर को हमारे आचार्यों ने, या वेद में कहा गया है ये पवित्र, मनुष्य का और सब जानवरों का पवित्र नहीं माना गया, अपवित्र माना, क्यों क्यों नहीं माना गया? हाड़ को अपवित्र माना जाता है किंतु शंख को पवित्र माना जाता है, ये वेद कहते हैं, क्यों? जब प्रत्यक्ष में उसको देखते हैं तो गोबर का प्रत्यक्ष गुण भी ऐसा होता है जो हम लोग उसको पवित्र मानने के लिए बात करते हैं, उस पर कोई गंध भी हो, गोबर से लीप दो या हाथ से धो लो तो उसके गंध को दूर कर देता है और अपना गंध उसने लिया, जर्मों को नष्ट कर देने की बड़ी अपूर्व शक्ति है। यहाँ पवित्र होने के लिए लोग गोबर खाते भी हैं, गोमूत्र भी लेते हैं, हाड़ में और सब हाड़ों में कुछ न कुछ जरूर गंदापन है, किंतु शंख में एकदम पवित्र हो, इसलिए वेद जो है वो प्रमाण्य है, वो भगवान के मुख की वाणी है, और उसके अनुगत यदि दूसरे प्रमाण हो तो वो ग्राह्य है, अन्यथा वो भी ग्राह्य नहीं। इनमें श्रुति मूल प्रमाण है, श्रुति माने उपनिषद का काय, यदि स्मृतियों में और वेदों में कुछ परस्पर कंट्राडिक्टरी भाव है, विरोधी भाव है, तो उसमें वेद के विचार को मानना पड़ेगा। पुराणों में और वेदों में यदि परस्पर विरोधी मंतव्य हैं तो किसका बात प्रमाण्य होगा? वेदों का ना? किंतु पुराणों में भागवत है, यदि सब में परस्पर विरोधी भाव हो और जो बात श्रीमद् भागवत कहते हैं वो सब प्रमाण्य हो, क्योंकि व्यास देव जी की अंतिम कृति है और प्रमाणिक है, इसलिए समस्त उसमें भी स्वयं लिखा है श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम प्रमाण अमलम प्रेमोपमर्थो महा इत्यादि श्रीमद् भागवत में खुद लिखे। यदि सब ग्रंथ पढ़ लिया इसके बाद में श्रीमद् भागवत यदि पढ़ लिया तो और किसी में रुचि नहीं रह जाती, अर्थोयं ब्रह्म सूत्राणां भारतार्थ विरणे में गात्री भाष्य रूप असो वेदार्थ परिकल्पना। ये श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरु है और उस सब का प्रपक्क फल है। यह गायत्री भाष्य रूपो असौ, गायत्री का भाष्य, ओंकार का बृहत भाव है, श्रीमद् भागवत के अर्थ को सिद्ध करने वाला है। सब श्रुतियों का सार श्रीमद् भागवत, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको सबसे श्रेष्ठ प्रमाणित किया। और सब शास्त्रों में कहा गया माता पिता का आदर करना चाहिए, स्त्री को पति की सेवा करनी चाहिए, पुत्र को पिता की सेवा करनी चाहिए, लोगों को और सब काम करना चाहिए, ये सब कर्तव्य पूरा करना चाहिए, लोगों को दान करना चाहिए, उपकार करना चाहिए। भागवत ने कहा कि और की तो बात क्या, गुरु न शस्य, स्वजनों न शस्य, पिता न शस्य,
जननी न शस्य, पोती न शस्य, नमचेद संपेत मित्रम।
तो ये सब हैं, किंतु जो भगवान की तरफ में आगे न बढ़ा दें और आसन्न मृत्यु से हमारी रक्षा न कर दे, वो गुरु गुरु नहीं, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, भाई भाई नहीं, बंधु बंधु नहीं, पति पति नहीं और पत्नी पत्नी नहीं। यदि आसन्न मृत्यु से आत्म तत्व को बतलाकर और भगवान में संबंध नहीं जोड़ देते, कोई गुरु भी गुरु नहीं। जैसे बलि महाराज जी के गुरु
शुक्राचार्य,
उनको भी कैंसिल कर दिया विषयों में लगाने वाले। बृहस्पति जी हैं, किंतु बृहस्पति जी की अपेक्षा भी व्यास देव हमारे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी का गुरुत्व तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। इसलिए श्रीमद् भागवत को सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माने। किस विषय में प्रमाण, किस विषय में प्रमाण, क्या करता है प्रमाण, किसको कहते हैं प्रमाण, माने किसी भी चीज के विषय में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस विषय में प्रमाण जो पेश करते हैं,
स्थिर सिद्धांत,
स्थिर सिद्धांत का नाम प्रमाण। अकाट्य हो, उस पर निर्भर किया जाए, वेद के अतिरिक्त, उपनिषदों के अतिरिक्त, भागवत के अतिरिक्त और निर्भर नहीं किया जा सकता। पुराण में सब पुराण जो हैं वो हैं, किंतु पूरे निर्भर योग्य नहीं है। उसमें कहीं कहीं पर ऐसे बात लिखे हैं जो लोगों को प्रसन्न करने के लिए, उनको प्रारंभिक रूप में भगवान की तरफ में लाने के लिए कहे। इसलिए मूल प्रमाण वेद है और उसमें भी शब्द है, वो भी गुरु परंपरा के द्वारा मान्य है, तत्व प्रमाण। उसमें वेद, उपनिषद, पुराण, कुछ स्मृतियाँ, मनुस्मृति में भी मनुस्मृति इत्यादि, और महाभारत का रामायण, कौन मूल रामायण, मूल रामायण और मूल महाभारत,
पंचरात्र,
पंचरात्र और इसके बाद में आचार्यों के द्वारा लिखित ग्रंथ जैसे रामानु, मध्वाचार्य और उनसे भी अधिक प्रमाणिक हम लोगों के रूप सनातन जी के ग्रंथ हम लोगों के लिए अधिक, इस तरह से उनके अनुकूल जो शास्त्र हैं। भागवत के अनुकूल है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। भागवत में शरीर संबंधी बातें नहीं है, आत्मा संबंधी बातें, ये मूल प्रमाण। अब उसी के द्वारा ये प्रमाणित होती है, हरि ही परम तत्तम हरे मीह परमम, पहला तत्तम हरि मीह परम, हरि ही परम तत्व है। हरि माने पापों को हरण करना और अपने चित्त को अपने तरफ में आकर्षण करना, हरण करना, ये दो नार्थ हैं। भगवान के जितने भी अवतार हैं वो सब हरि हैं, किंतु अपनी अंतिम सीमा तक कौन प्रमाणिक है? हरि कौन है? नारायण भी हरि है, ओमकार भी हरि है, हरि ओम तत्सत। रामचंद्र जी को भी हरि कहा गया, कृष्ण को भी हरि कहा गया, बलदेव जी को भी हरि कहा गया, किंतु सबसे श्रेष्ठ हरि किसमें पर्यवसित होता है? तो द लास्ट पॉइंट कृष्ण में। इसलिए कृष्ण ही हरि, क्यों? नारायण हरि हैं समस्त भक्तों को, यहां तक कि लक्ष्मी जी को चित्त को हरण करके रखते हैं, आकर्षण करके रखते हैं। बड़े सुंदर हैं, उनमें सब गुण हैं, बड़े दयालु हैं, सब कुछ है, किंतु अपनी लक्ष्मी जी को ही ठीक नहीं रख पाते। उनकी लक्ष्मी जी भी कृष्ण को देकर ललचा करके और उनको छोड़ करके कृष्ण की सेवा करने के लिए आतुर हो उठते हैं। इसलिए हरि शब्द का प्रयोग कृष्ण में ही सब आधिक है। इसलिए हरि शब्द से कृष्ण को ही समझना चाहिए। वे सर्वशक्तिमान हैं। तत्त्वम हरिमिह परमम परमम सर्वशक्ति। सर्वशक्ति किसको कहते हैं? आप लोग कल इस पर तैयार होकर के हमको उसमें कल पूछें। चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, उनकी क्रियाएं और उसकी वृत्तियां हैं संवेद, संदिनी, ह्लादिनी, उसकी छाया है महामाया, महामाया। उसकी क्रियाएं क्या हैं? जीव को कैसे ये बांध लेती है और उसको कष्ट देती है? चित शक्ति का कार्य, माया शक्ति का कार्य, ह्लादिनी शक्ति का कार्य, ये सब थोड़ा सा जरा देख करके आए। न तस्य कार्यम करणञ्च विद्यते, न तत्समस्य अधिकस्य दृश्यते, पराश शक्ति विद्धैव श्रूयते, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया। और सब है, इसको देख करके कल आई, कल पूछे। श्रोता लोग बहुत विलंब से आते हैं, कल से मैं फाइन कर दूंगा, कोई देर से आया, 4:30 बजे आप लोग आ जाया करें, नहीं तो धर्म अंधकार हो जाता है। कल कितना बज गया? 6:45 ना, 5:15
छोटा सा अंधकार है।
कल हम लोग पढ़ रहे थे पूर्णापुलिंद उर्गाय पदाब्जराग श्रीकुंकमेन दैतास्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मर रुज तृणरुषितेन लिप्यंत आनंद कुचस्त्यहो तदा। ये वेणु गीत का प्राय अब अंत के तरफ का श्लोक है। गोपियां घरों में एकत्रित होकर के अपने अपने अनुकूल भाव वाली सखियों के सभा में ये उद्गार कर रहे हैं। किसी ने कहा हम अब मर करके हिरण बने और कृष्ण को दर्शन करें। किसी ने कहा कि मैं गैया और गैया के बछड़े बछड़ी बने। उसमें गैयों को कौन रोकने वाला है कृष्ण के पास में जाने से, और बछड़ों को ऐसे वो मुग्ध हो जाते हैं, हम भी बछड़ा या बछड़ी होंगी या गाय होंगी, कृष्ण बंसी बजाएंगे, हम उनके निकट पहुंच जाएंगे, स्वच्छंद रूप से उनका दर्शन करेंगे। इसी तरह से कोई मेघ बनना चाहती है, कोई कोई कुछ बनना चाहती है, यहाँ पर उससे बढ़कर के पहले कीड़े भ्रमर, इसके बाद में पक्षी, इसके बाद में हिरण इत्यादि, गवों को वर्णन किया, आकाश का वर्णन किया, नदियों का वर्णन किया। अब वो कर रहे हैं, अब मनुष्यों में आए, मनुष्यों में पहले अब वर्णन कर रहे हैं। अरे गोपियों की तो बात क्या कहें, कोल, भील, संताल, पुलिंद, वृंदावन में, ब्रज में पहले पुलिंद, पुलिंद, पुलिन, पुलिन माने नदियों का किनारा, उसके किनारे छोटी छोटी झोपड़ियों को बुना करके अस्थाई रूप में, जैसे गोवर्धन में वो कंजड़े होते हैं, ऐसे ही रहते थे पुलिंद बन के ये लोग। उनकी स्त्रियां लकड़ी सूखी बिनने के लिए, रसोई सोई के लिए, या कंडे बिनने के लिए, या उसको बेच करके अपनी जीविका चलाने के लिए, यही सब काम करते, कारीगरी का कुछ काम जानते थे, आर्ट और कलाएं, वहाँ पर कुछ अपने बना करके लोगों के घरों में बेच देना, या किसी के घरों में जा करके पानी भर देना, या और कोई काम चलाना, ये सब उनका काम। तो ये गोपियाँ कर रही हैं पूर्णा पुलिंदा पुलिंद। ओहो, अब तक हमने जो वर्णन किए वो तो सब ठीक है, धन्य है वो, धन्य मूढ़ मत अपहरण्य, ये और सब जितने हैं नदियां धन्य, कृष्ण के प्रति अनुराग भर करके देख रहे हैं, किंतु इन सब में पूर्णा, पूर्ण जो है कौन है, पुनिंद की लड़कियां किशोरिया जो है वो धन्य है। क्यों? उर्गाय पदाब्ज राग शिकुम कुमेन दैता स्तन मंडितेन तद दर्शन स्मर रुजतेन रुषतेन लिप्यंत आनंद कुचौष जहोस तदाधिम जहौ तदाधिम। ये पूर्णा पुलिंद इसलिए कि ये जंगली लड़कियां हैं वनो जंगल, कंडे या लकड़ी बिनने के लिए गोवर्धन की तराटी में आई और आकर के देखा कि आज सवेरे आकर के देखा घासों के ऊपर तृण रुषितेन, घासों के ऊपर में कुछ कुमकुम लगे हुए हैं, घासों के ऊपर में ओस बिंदु हैं, और ओस बिंदु पर वो लगा है कुमकुम, कुछ भीजा सा हुआ है वो वहां पर लगा हुआ, देख करके अत्यंत हृदय में इनके भाव उठे, और भाव उठने के साथ में हृदय अत्यंत ताप हो गया, जिसको काम रोग कहते हैं। उत्कंठा हुई कृष्ण से मिलने की, क्यों हुआ, पूर्व स्मृति इनको हृदय में आई, इसके पहले दिन ही गोपियां और कृष्ण किसी कुंज में गोवर्धन के, और वहां पर उन दोनों का मिलन हुआ था, और वो लोग चौपड़ खेल रहे थे, दो दल था, एक कृष्ण का दल और एक श्रीमती जी का, मेन खिलाड़ी कृष्ण और वो थी राधा जी किशोरी। कृष्ण की सहायता के लिए पक्ष में सुबल और मधुमंगल इत्यादि, और ललिता विशाखा और सखियां थी, कभी वो जीतते कभी वो हारते, इस तरह से चल रहा था। कृष्ण किसी चीज को दाव पर लगाए और वो हार गए, गोपियों ने कहा जैसे अब इसके बाद में आप क्या दाव लगाएंगे, क्यों, तो आप तो सब हार गए, अजय कहाँ हार गया, मैं सब, मैं थोड़े हारा, हमारी अभी बंसी है, तो बंसी मैं दाव पर लगाऊंगा किंतु तुम लोग क्या लगाएगी इसके बदले में, वैसे ही मूल्यवान चीज होनी चाहिए, बंसी के हमारा बंसी हमारे प्राण के समान, तो तुम लोग भी ऐसा कोई चीज दाव पर लगाओ तो फर हम दाव पर लगाए। तो गोपी ने अच्छा आप बतलाइए इसके बदले में क्या दाव रहेगा। तो उन्होंने कुछ कहा। अच्छा, तो गोपियां बोली अच्छा इस दाव पर रखने के लिए आप उनको रख रहे हैं, हम अपनी सहेली को सखी को रखेंगे। उसने कहा बड़े प्रसन्न हुआ, जा अच्छा अपनी सखी को रखो। जैसे सखी उन्होंने एक गांव की गोवर्धन के पास में पुलिंदी कन्या जो थी उसको कहा जाओ उसको बुला लो। बस उसको बुला लिया। वो शर्माती हुई बेचारी इन लोगों की सभा में आकर के जरा दूर बैठ गई, लज्जा है क्योंकि नीच जाती की उसको बैठा। तो उसने कहा कि मैं दाव पर नहीं रखता, पर यह तब आप हार गए ये इसका मतलब है। वो प्यार सब मिल करके ताली बजे। वो कृष्ण को उस समय जो देखी पुलिंदी कन्या कृष्ण को रूप को देख करके, जगत में पशु पक्षी अभी तक वर्णन किया सभी कृष्ण के रूप को देख करके और मुग्ध हो जाते हैं। तो पुलिंद कन्या राधा जी की अपने को दासी समझती थी वो पुलिंद, वो कृष्ण को देखा देख करके अत्यंत मुग्ध हो गई। वही सवेरे कंडे और लकड़ी भून गई तो उसने कुमकुम को देखा। ये कुमकुम उसने देखा था कहाँ, उस समय राधिका जी के स्तक्षल पर अंगों पर देखा था। उसका गंध जानती है कि कहाँ का ये कुमकुम है। हाँ, अरे वहां पर पुलिंदी कन्या हिरण और वृक्ष और लता गुल्म होना ये साधारण बात है। वहां के हिरण लोग समझते हैं कि कृष्ण आ रहे हैं गोचारण करने के लिए, कैसे कस्तूरी भी कस्तूरी का भी सैतम कि मूत्रम तुहम प्रभु। वो सभी लोग कृष्ण का गंध है ऐसा जानते हैं कि मतवारा गंध है वो जान लेते। वहां के पशु पक्षी की थी, गोपियों के लिए तो जानना तो कोई बात बड़ी बात नहीं। इसलिए उसने देखा ये कुमकुम और उसके मन में कृष्ण से मिलने की ऐसी तीव्र लालसा पैदा हुई कि अपने को रोक न सके। कृष्ण जब गोचारण करके जब भी लौटते हैं गोष्ठ में नंद भवन में जब जाते हैं, तो जब ही वन से अब गोकुल में प्रवेश करेंगे या वृंदावन में या नंदगांव में प्रवेश करेंगे, सब जितने गोकुल के पुरुष स्त्रियां महिला वृद्ध बालक सब आ करके वहां पर खड़े हो जाते हैं। कृष्ण बंसी वादन करते हुए आते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। वहां पर कुछ बालिका वो बालक भी दौड़ करके आ जाते हैं। बालिका माने कौन, 5 वर्ष से भी छोटी बालिका हैं वो, जिनकी स्वच्छ रति है। रति भी शांत रति भी बहुत तरह की होती है, स्वच्छ सामान्य स्वच्छ और नहीं शांत सामान्य और अभी बतला स्वच्छ और एक कुछ है तीन समर्था गोपियां हैं। तो ये स्वच्छ रति वाली, स्वच्छ रति माने किसको कहते हैं, स्थाई रति अभी उत्पन्न नहीं है किंतु रति उत्पन्न हुई, किंतु वह रति जैसे एक कुड़ी हुई एक बीज लगाया बीज में पत्ते आ गए लता बेल बढ़ने लग गई और बढ़ने के बाद में अभी पत्ते जो है अभी कुछ विकसित नहीं हुए, छोटे 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 अत्यंत छोटे, ये किस चीज की लता है उस समय मालूम नहीं होगी, किंतु पत्ते जब अपना पूर्ण में आ जाएंगे तब मालूम पड़ेगा जैसे ये कौन सा चीज लता है, या फूल आ जाएगा तो और मालूम हो जाएगा। ऐसे रति तो ही किंतु अभी स्वच्छ है। और जब कृष्ण को जिस प्रकार के भक्तों के साथ में वो देखते हैं वैसे ही उनकी हो जाए। जब यशोदा जी को देखा कृष्ण का लालन पालन कर रही हैं, उनकी आरती ले रही हैं, बलैया उतार रही हैं यशोदा जी, और अपने अंचल से उनका मुख हार बिंद ऐसे धो रहे हैं साफ कर रही हैं, उस समय देख करके मुग्ध हो जाती हैं। ठगी ठगी पलक नहीं पड़ते उनकी उन बच्चियों के, और देखती रहती हैं और सोचती हैं मैं भी माँ होती तो ऐसे ही, यह स्वच्छ है। थोड़ी देर में देखा सखा लोगों के साथ में कृष्ण बंसी बजाते हुए और दौड़ते हुए खेलते हुए खाते हुए और बड़े प्रसन्नता के साथ में चल रहे। वो वहाँ पर ठगी सी देखती रह जाए, कहे मैं भी सखा होती तो ऐसे ही दौड़। थोड़ी देर में बाद में गोपियों को देखा, कृष्ण मुग्ध होकर के खड़े थे, अब तक तो भाग रहे थे, यहाँ गोपियों को देखा जी वहां से देख रही हैं खड़ी। नैनो पलाचित तनम गोगो संभावितम गोविंदम कलवेणु वादन परम दिव्यांगम भूषा भजे। तो उस समय उनको देख करके कृष्ण खड़े हो गए, कांपने लग गए, उस समय उनका मुकुट गिरने लग गया, पीताम्बर नीचे गिरने लगा और मालूम है गिर जाएंगे। इतने में मधुमंगल ने कहा, अरे अरे पिताजी तुम्हारे सामने ये क्या कर, जरा ऐसा कर। उस समय कृष्ण की ऐसी स्थिति बन जाती है उनके देखने से ही। उनको जब देखा ना उन लड़कियों ने, बस राधा जी की सहेली बन करके उनकी सेवा कर, इसको कहते हैं स्वच्छ। ये पुलिन कन्या गौओं की अपेक्षा, लताओं की अपेक्षा, मृगों की अपेक्षा और मेघ की अपेक्षा सबसे ये श्रेष्ठ है। ये अब कुछ नर रूप की यहाँ पर लीला है पुरुषों की और ये स्त्री। यहाँ पर वो जो कल देखा है या बीच बीच में उनकी लीलाओं को देखती हैं, अब धीरे 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 राधिका जी के प्रति अत्यंत निकट होकर के उनकी सेवा चाहती हैं। इसलिए जब वो देखी घास के ऊपर में दूब की घास और वहीं पर कुमकुम देखा, बस कुमकुम देखने के साथ में स्मररूज आया। स्मररूज मैंने काम, तीव्र कामना है कृष्ण से मिलने की आकांक्षा की। यदि पशुओं में पक्षियों में हिरणों में ये मिलने की कृष्ण से भावना आती है तो इनमें आना बहुत ही स्वाभाविक है, बस ये मिलने की आई उत्कंठा थी। यदि किसी साधक में ऐसे ही उत्कंठा मिलने की हो तब तो कुछ साधन भजन है, उत्कंठा ही नहीं है मिलने की, बल्कि विषयों को प्राप्त करने में जितनी उत्कंठा लगन और धून है भक्ति में उतना नहीं है। ऊपर से कुछ है कि तो उत्कंठा, उत्कंठा ही मूल चीज है। उत्साह निश्चय उत्कंठा होनी चाहिए, यदि साधक में उत्कंठा नहीं, साधक में उत्कंठा है ये प्राण है भजन का, ये कैसे भी आनी चाहिए। इनमें उत्कंठा हुई कृष्ण से मिलने की इन। अब इन्होंने अनुमान लगाया देख करके, ये कुमकुम क्या चीज है, अरे ये तो कृष्ण तो कुमकुम लगाते नहीं किंतु गोपियों के अंगों का कुमकुम यहां पर लगा कैसे, ये तो मुश्किल है। ये कृष्ण के चरण यहां पर चले हैं या गोपियों के चरण, तो गोपियों के चरण में कुमकुम नहीं होगा, यह कुमकुम होगा कहां, कृष्ण के चरणों में लगा हुआ ही कुमकुम एकमात्र हो सकता है। किंतु कृष्ण के चरणों में कहां से कुमकुम आया, तत्ते सुजात चरणम बरूह, क्या सुनई प्रिय दिधि मई कर्कशेशु तेनाटवें अटस तत्ते, ये गोपियों के अंगों में लगा कुमकुम। उन्होंने बड़े प्रीति के साथ में और यह कुमकुम उनके अंगों से लगा और कृष्ण के चरणों में आया। कृष्ण अभिशाप करके जब जा रहे हैं लौट रहे हैं उस समय में उनके चरणों का कुमकुम यहाँ जरूर लगा, बस एकदम प्रमत्त हो गई और स्मररुज जो उसको देखने से हुआ, अब वो अपने को चेक नहीं कर सकी, बस उसको लिया और ले करके अपने सिर में लगाया। अपने सब अंगों में लगाए। और तत्क्षणात उनका वह जो काम भाव आया था वो दूर। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है, ब्रजबद्ध भी इदं च विष्णु, क्या है, विक्रीतम ब्रजबद्ध भी इदं च विष्णु श्रद्धान्यो अन्यो सुनियात अथ वर्णयेत ज भक्तिं परां प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमाशु अपिहनोति। हृदय में बहुत से रोग हैं, विषयों के प्रति लोभ, अन्याभिलाष, संसार के चीजों में इतना आकर्षण है कि भगवान और माया की पुतली कहीं खड़ी रही हो तो भगवान के तरफ भी न देख करके उनके तरफ में आदमी झांकने लग जाएगा। विग्रह की तो बात ही क्या, विग्रह रहने पर भी, और यदि स्वर्ण की कोई पुतली रहे स्त्री लोगों की या पुरुष की, आदमी आकर्षित हो जाता है, धन की तरफ आकर्षित हो जाता है, प्रशंसा की तरफ में आकर्षित हो जाता है। इसलिए तो बहुत से लोग कुछ आए भजन करने के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, और थोड़े दिनों के बाद में थोड़ी कुछ अभी हरिनाम कर रहे थे, भक्तों से हरि कथा सुन रहे थे, कुछ रुचि हुई थी, किंतु वहां से गिर पड़ते हैं, बीच बीच में चले जाते हैं। क्यों, माया में आकर्षण नहीं है, बहुत आकर्षण। यदि भगवान का वैसा आकर्षण है तब तो नहीं संसार में जाएंगे, और नहीं तो बाध्य है उस आकर्षण में जाने के, अवश्य में ही बजाएंगे ही। माया का आकर्षण बड़ा प्रबल है। छोटा हरिदास नहीं, काला कृष्णदास, कोई बालक 16-17 वर्ष का, 16-17 वर्ष का लड़का, किशोर लड़का, सब लोगों ने कहा प्रभु जी आप अकेले जा रहे हैं दक्षिण दिशा में, अकेले मत जाइए। हाँ, काला कृष्णदास गोरा नहीं, तो वो सब लोगों ने कहा स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी, नित्यानंद प्रभु जी ने, मैं आपके साथ में चलूंगा। उन्होंने कहा मैं चलूंगा। महाप्रभु जी ने कहा यदि इनमें से किसी को ले लिया तो सब लोग कहेंगे जी हमको नहीं लिया इनको लिया, दोष होगा, भाई मैं तो अकेले जाऊं। तो उन्होंने अच्छा हम लोगों से जिनसे परिचय नहीं आपका है, ऐसा अपरिचित एक सरल सीधा ब्राह्मण का लड़का आपके साथ में दे देंगे, आप उसको रखेंगे, क्योंकि आपका दिमाग कब कैसा होता है समझ में नहीं आता, आप सब कुछ भूल जाते हैं, शरीर की भी देह दाय की भूल आपको भूल जाते हैं, आपका डोर और कॉफी ये तो साथ में लेना चाहिए ना, करवा पानी पीने का, तो ये कौन लेगा, आप तो कहीं फेंक देंगे और फिर चल चलेंगे, कहेंगे कहां मरो प्राणनाथ मुरली, कहां जाऊं कहां पाऊं, आप तो हाथ उठा करके और कहीं लोटेंगे पोटेंगे, तन का कपड़ा भी कहीं गिर गया आपको पता नहीं होगा, रोते रोते चलेंगे। तो आपके लिए ये फिर थप, जब डोर कॉपिन की जरूरत होगी पानी पीने के लिए तो कहां से मिलेगा, सब जगह पानी उपलब्ध थोड़े हो, इसलिए आपके लिए भिक्षा का भी जरूरत होगी तो कर लाएगा, इसलिए एक आदमी साथ में रखना है। तो काला कृष्णदास को साथ में लिया। जब महाप्रभु जी कन्याकुमारी में पहुंचे वहां पर भट्ट थारिया नाम का एक दल था, वो जैसे कि वो गोवर्धन में रहते हैं ना, क्या कंजर फंजर, वो गाड़ियों पर बैलों पर घोड़ों पर गधों पर अपना सामान लेकर के आज यहाँ रहेंगे कल वहां रहेंगे कल वहां रहेंगे ऐसे घूमते। उनका यही काम था कि अच्छे अच्छे लड़कों को अच्छी अच्छी लड़कियों को अपने दल में रख लेते। कैसे रख लेते, लड़कियों को दिखला करके लड़कों को और लड़कों को दिखला करके लड़कियों को अपने दल में रखते, और शहर से लिया एक को या कहीं से, और दूसरे दिन वहां से भाग करके चले जाते दूर, जो गांव वालों को पता लगने पर भी कुछ नहीं कर सकते, और जो दूसरी जगह कुछ करे तो मारपीट करते थे, डकैती चोरी सब कुछ करते थे। उनका यही काम था, लूट मार करना और इस तरह से लोगों को अपने चंगुल में फंसाना। तो वहां पर ठहरा हुआ था बहुत भट्ट थारियों का दल, और कृष्णदास को वहां पर भी लेकर के वहां पर पहुंच गए। महाप्रभु भिक्षा के लिए गए, इतने में उसको रख गए पेड़ के नीचे कहीं, और पासी में वो थी, बस उनको लुभावना देकर प्रलुब्ध कर और घर में अपने डेरे में बुला लिया। अब बड़े प्यार से मानो इनके जुग जुगांतर का लड़का बेटा हो, कहा देखो इस लड़की से तुम्हारी शादी कर देंगे और बड़े आनंद के साथ में तू रहेगा, राजा बन जाएगा, सब कुछ यहाँ पर तुम सुनोगे। बस बेचारा लुब्ध हो गया और कहा जी अच्छा तो मैं तुम रहूँ साथ में रहूँ। महाप्रभु आए देखे जा रही कहाँ गया वो लड़का, देखा तो यही ले गुल्लो भी ले गया, भीतर में प्रवेश कर गए और वो लोग इन पर झगड़ पड़े, विवाद करने मारपीट करने के लिए तैयार। महाप्रभु सीधे वहीं गए जहाँ पर उनको छिपा कर का उसको चोटी पकड़ लिया, बदमाश हमको छोड़ करके यहाँ पकड़ करके घसीट करके उसको ले आ, वो भी नहीं आना चाहता, बड़ी मुश्किल से घर सीटा काला कृष्णदास भैंस करके ले आए। अब उनको मारने के लिए तैयार, किंतु कुछ ऐश्वर्य उन्होंने लीला दिखला दी और खींच करके ले आए, कुछ दिन अपने साथ में रखे तो देखो भगवान के पास में रहने पर भी माया कैसे खींच ली जाती, तो और जीवों की तो बात ही क्या, बड़ी भयानक है माया, इसके चंगुल से निकलना बड़ा भारी कठिन, सब छोड़ दिया जाएगा, स्त्री भी छूट जाएगी किंतु प्रतिष्ठा नहीं छूटेगी, वो रग रग में रक्त के एक एक बिंदु में समाई हुई है प्रतिष्ठा, सब छूट जाएगी किंतु वो प्रतिष्ठा नहीं छूटेगी। तो ये विशेष करके गुरु जी की कृपा, भगवान की कृपा, वैष्णव की कृपा हो तो ये छूट सकती, अन्यथा सहज ही नहीं छूटेगी, कुछ अपनी चेष्टा भी चाहिए उनकी कृपा भी चाहिए। तो ये जो काम रूज है उसके लिए बतला रहा था कि श्लोक एवं विकृत विष्णु, अर्थात जिसके अंदर में कामना वासनाएं ये सब है अनर्थ भरे पड़े हैं, और ये लोग भी यदि श्रद्धा पूर्वक भागवत का श्रवण करें, वो भी रसपंच अध्याय के लिए कहा, इस अध्याय को गोपियों के साथ में कृष्ण की ये जो अपराकृत लीलाएं हुई हैं इनका श्रद्धा के साथ में श्रवण करें। भाई ये श्रद्धा कैसे होगी, पूर्व जन्म का संस्कार, इस जन्म में संस्कार, गुरु और वैष्णव का संग, तब वो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के साथ में कोई सुने तो होगा, और नहीं तो उपन्यास में जो अच्छा लगता है पढ़ते हैं, ये भी उपन्यास आ रहे गोपियों के साथ में कृष्ण रास किया, ऐसे पढ़ने से वो श्रद्धा नहीं होती, सचमुच में श्रद्धा होनी चाहिए अपराध। तो सुनने से, श्रद्धा पूर्वक सुनने से काम रोग हृदय रोग सब दूर हो जाए, हृदय में ही वो सब हो, तो ऐसे पहले तो उस पुनिंदी को हृदय में मान लो कि काम भी हुआ, किंतु गोपियां महानुभाव हैं, कृष्ण की हिलादनी शक्ति हैं, उनकी कृपा से अनर्थ दूर हो सकता है, इसलिए यह कुमकुम जो गोपियों का, और वो भी कृष्ण के चरणों में लगा और महानतम शक्तिशाली युक्त बन गया, और वो तीर्ण में लगा ब्रज की भूमि में, वो कुमकुम कैसे कृष्ण की वैजयंती माला पर हुआ मिला, दोनों मिले, वो मिला और दोनों मिलकर के गोपियां और कृष्ण का मिलकर के वहां पर वो कितना शक्तिशाली होगा, कृष्ण की चरण की धूलि, एक वैष्णव की चरण की धूलि में कितनी शक्ति है, सीता रामचंद्र जा रहे हैं और एक पत्थर पड़ा हुआ मिला, रामचंद्र जी ने कहा भाई ये बड़ा सुंदर जंगल है किंतु इसमें कोई रहता तो नहीं है, कुटी तो है किंतु रहने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता, जन शून्य है, क्यों, एक पत्थर पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जी यहीं पर अहिल्या जी और गौतम जी रहते थे और यहीं पर उन्होंने अभी संपाद दिया अहिल्या को, जा तू पाषाणी हो जा, पाषाण के तब से ये पाषाणी होकर के पड़ी है और तब से ये जंगल शून्य है, अब आप इसको अपने चरणों की धूलि से स्पर्श कर दी, ये पुनर्जीवित होकर के उठाएंगे। इस और श्री रामचंद्र जी ने थोड़ा सा स्पर्श किया और स्पर्श करते ही परम सुंदरी दिव्य देवी के रूप में वो उठी, रामचंद्र जी की परिक्रमा की, स्तव स्तुति की और फिर उनसे विदा मांग करके और अपने पति के पास में चली गई। तो किसलिए कह रहा था? पदधूलि, कृष्ण के चरण की धूलि में ऐसी शक्ति है। और ये कुमकुम गोपियों के अंगों का कुमकुम, इसलिए कितनी शक्ति होगी, बस को उनके हृदय में जो पुलिंदी, उसके भीतर जो काम रोग था, एकदम जहां लगाया स्पर्श किया तहां सब काम रोग एकदम दुर्मल दूर हो गया, परम निर्मल हो गई और कृष्ण प्रेम का संचार वहां पर हुआ। फिर गोपियों की तरफ उनकी भावना हो गई, गोपियों के अनुगत में कृष्ण की सेवा करने लगी। तो इसलिए कह रहे हैं पूर्णा पुलिंद, ओ ये पुलिंद कन्याएं सबर की होते हुए भी पुलिंद कन्याएं होती हैं, ये धन्य है जो हिरणी के लिए नहीं है। हिरण उस कुमकुम को क्या समझेंगे, ये क्या चीज है, ये समझने लगे उसका तात्पर्य, कुमकुम क्या है इसको समझना साधारण बात नहीं। इसमें राधा कृष्ण के मिलन की सारी उनका विलास एकदम हृदय में स्फूर्ति हो जाता है। इसलिए कहते हैं उरुगाय पदाब जरा गए, उरुगाय के चरणों का में लगा हुआ कुमकुम और उसे घास पर पड़ा, डायरेक्ट किसी से संबंध नहीं है और तभी इसको दूर कर दिया इसके काम को। ये उरुगाय कौन है? उरु गायती वेद इत्यादि जिसका उरु रूप में बहुत सर्वत्र उनका गान करते हैं महिमा का, एक अर्थ ये है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि उत्तम श्लोक